एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम मानव अनुभव के एक ऐसे पहलू की गहराई में उतरेंगे जो है तो बेहद बुनियादी लेकिन अक्सर हमारी नज़र से ओझल रहता है, हमारा स्पर्श का एहसास, और जानेंगे कि कैसे आज की तकनीक इसे समझने और मतलब इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।
बिल्कुल, और इस पड़ताल में हमारी गाइड होंगी लिनेट जोन्स, और उनका काम खास तौर पर हैप्टिक्स के क्षेत्र में।
हैप्टिक्स?
हाँ, यानी स्पर्श से जुड़ा विज्ञान और तकनीक। आज की दुनिया में जब हम स्क्रीन और आवाज़ों से इतने घिरे हुए हैं, तब ये जानना दिलचस्प है कि स्पर्श का विज्ञान अचानक इतना मतलब महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है।
और ये सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा का विषय नहीं है ना?
हाँ,
ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे तकनीक हमारे डिजिटल अनुभवों को सिर्फ देखने और सुनने तक सीमित न रखकर उन्हें महसूस करने लायक बना सकती है।
हाँ बिल्कुल।
कुछ लोग तो इसे मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन यानी हमारे और मशीनों के बीच बातचीत का अगला बड़ा पड़ाव मान रहे हैं।
हाँ, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका असर सिर्फ गेमिंग या मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला हो सकता है।
तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिनेट ए. जोन्स हैं कौन, मतलब इस विषय पर बात करने के लिए उनकी विशेषज्ञता का आधार क्या है।
जी, लिनेट जोन्स मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT जैसी प्रतिष्ठित संस्था में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट या प्रोफेसर के तौर पर काम करती हैं। उनका पूरा अकादमिक जीवन इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता रहा है कि इंसान चीज़ों को कैसे महसूस करता है और इस समझ का इस्तेमाल हम बेहतर मशीनें बनाने में कैसे कर सकते हैं जो स्पर्श के जरिए हमसे बात करें।
अच्छा, और उनकी पृष्ठभूमि भी कमाल की है। जैसा मैंने पढ़ा, उनके पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में PhD है और उन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट डॉक्टरल काम किया है।
हाँ, ये मेल बहुत अनोखा है। वो मानव जीव विज्ञान की बारीकियों को भी समझती हैं और इंजीनियरिंग की जटिलताओं को भी।
सही का, यही बात उन्हें हैप्टिक्स जैसे क्षेत्र के लिए एकदम सटीक विशेषज्ञ बनाती हैं।
बिल्कुल, उनका काम इस बात पर केंद्रित है कि हमारा हाथ, जो कुदरत का एक अद्भुत इंजीनियरिंग नमूना है, चीज़ों को कैसे महसूस करता है, कैसे पकड़ता है, और फिर इस ज्ञान का इस्तेमाल ऐसे उपकरण बनाने में किया जाए जो हमें वर्चुअल दुनिया में भी स्पर्श और गति का एहसास करा सकें। वो इस फील्ड की जानी मानी आवाज़ है।
एक तरह से वो विज्ञान और इंजीनियरिंग के बीच, मतलब इंसान के एहसास और मशीन की भाषा के बीच पुल का काम कर रही हैं।
बिल्कुल सही।
तो लिनेट जोन्स के काम पर आधारित हमारी ये चर्चा असल में किस बारे में है, इसका केंद्रीय विचार क्या है?
देखिए, मूल तर्क या कहें कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है स्पर्श, जो हमारे लिए वास्तविकता का सबसे बड़ा पैमाना है, जिससे हम दुनिया और एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, वही डिजिटल क्रांति में सबसे ज्यादा नज़रअंदाज किया गया है। हम देखते हैं, सुनते हैं, पर डिजिटल दुनिया को महसूस करने का अनुभव अब तक मतलब अधूरा रहा है।
अच्छा, तो जोन्स का काम इसी अधूरेपन को भरने की दिशा में एक कदम है।
जी हाँ, उनका कहना है कि स्पर्श के विज्ञान यानी हैप्टिक्स को तकनीक में जोड़ना मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन का अगला जरूरी चरण है। ये इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है कि हम स्पर्श की भावना को वैज्ञानिक तौर पर कैसे समझें, तकनीक के जरिए कैसे उसकी नकल करें, और कैसे इसे अपनी असली दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच की खाई पाटने के लिए इस्तेमाल करें।
बिल्कुल, सोचिए अभी हमारे कंप्यूटर या फोन के इंटरफेस ज्यादातर स्क्रीन और स्पीकर पर निर्भर करते हैं, सीमित है ना?
हाँ, सीमित है। लेकिन जोन्स का तर्क है कि अगर हम स्पर्श के पीछे के जीव विज्ञान और हैप्टिक डिवाइस बनाने की इंजीनियरिंग दोनों को समझ लें, तो हम ऐसी तकनीक बना सकते हैं जो ना सिर्फ ज्यादा असली और दिलचस्प हो,
जैसे गेमिंग या वर्चुअल रियलिटी में।
हाँ बिल्कुल, बल्कि ज्यादा सुरक्षित भी हो, जैसे कार चलाते वक्त चेतावनी मिलना, ज्यादा सुलभ हो, जैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए, और ज्यादा असरदार भी, जैसे डॉक्टरों की ट्रेनिंग या दूर से मशीन ऑपरेट करने में।
संक्षेप में कहें तो ये चर्चा हैप्टिक्स को किसी रहस्यमयी भविष्य की तकनीक की तरह नहीं, बल्कि आज की तेज रफ्तार से विकसित हो रही तकनीक के एक वास्तविक क्षेत्र के रूप में देखती है।
सही कहा, ये सफर जीव विज्ञान की गहराइयों से शुरू होता है, इंजीनियरिंग की चुनौतियों से गुजरता है, और फिर असल दुनिया में उसके इस्तेमाल तक पहुंचता है।
चलिए इसी सफर पर थोड़ा और गहराई से चलते हैं। शुरुआत करते हैं स्पर्श के जैविक आधार से। जोन्स हमें याद दिलाती हैं कि स्पर्श कोई अकेली इंद्रिय नहीं बल्कि कई चीजों का मिला जुला सिस्टम है। इसमें पहला हिस्सा है त्वचा से महसूस करना, जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्यूटेनियस सेंसेशन कहते हैं, यही है ना?
जी हाँ बिल्कुल। हमारी त्वचा में कई तरह के खास सेंसर होते हैं जिन्हें मैकेनोरिसेप्टर्स कहा जाता है। ये अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ दबाव महसूस करते हैं, कुछ कंपन, कुछ खुरदरापन या चिकनाहट जैसी बनावट।
अच्छा, मतलब हर एहसास के लिए अलग सेंसर?
हाँ, इन्हीं की वजह से हम रेशम के मुलायम एहसास और पत्थर के सख्ती के बीच फर्क कर पाते हैं। हर तरह की छुअन के लिए एक अलग विशेषज्ञ सेंसर है हमारी त्वचा में।
कमाल है। और बात सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं है, है ना?
हाँ, एक और अहम हिस्सा है काइनेस्थेसिस और प्रोप्रियोसेप्शन। हाँ, ये शब्द थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनका मतलब सीधा सा है। ये हमारे शरीर के अंगों की स्थिति, उनकी हरकत और उन पर लगने वाले जोर को महसूस करने की हमारी क्षमता है।
अच्छा, जैसे आंखें बंद होने पर भी पता होता है कि हाथ कहाँ है?
बिल्कुल, ये एहसास हमारी मांसपेशियों, नसों और जोड़ों में मौजूद रिसेप्टर से आता है। इसी की बदौलत हम आंखें बंद करके भी बता सकते हैं कि हमारा हाथ कहाँ है या किसी ग्लास को उठाने के लिए कितना जोर लगाना है, ताकि वो गिरे भी नहीं और टूटे भी नहीं। त्वचा से मिलने वाली जानकारी जैसे ग्लास ठंडा है या गीला, और अंगों से मिलने वाली जानकारी जैसे ग्लास कितना भारी है और हाथ कहाँ है, ये दोनों मिलकर हमें किसी भी चीज का पूरा, मतलब एक 3D अनुभव कराते हैं।
ये तो कमाल की जैविक इंजीनियरिंग है जो हम सब अपने साथ लेकर घूमते हैं। अब सवाल ये है कि तकनीक इसकी नकल कैसे कर सकती है?
हाँ, यहीं पर हैप्टिक इंटरफेस का जिक्र आता है। ये ऐसे उपकरण हैं जो हमारे और कंप्यूटर के बीच स्पर्श के जरिए दो तरफा संवाद करवाते हैं। जोन्स इन्हें मोटे तौर पर दो तरह का बताती हैं।
दो तरह के? कौन कौन से?
पहली किस्म है टैक्टाइल इंटरफेसेस। ये हमारी त्वचा पर उत्तेजना पैदा करते हैं। सबसे आम उदाहरण तो हम सबके फोन या गेम कंट्रोलर में मिलने वाला कंपन है, जिसे वाइब्रोटैक्टाइल डिस्प्ले कहते हैं।
हाँ, वो तो रोज महसूस करते हैं।
बिल्कुल, लेकिन इसमें और भी उन्नत चीजें शामिल हैं, जैसे ब्रेल डिस्प्ले जो दृष्टि बाधित लोगों को पढ़ने में मदद करते हैं, या ऐसी नई तकनीकें जो स्क्रीन को छूने पर अलग अलग बनावट का एहसास करा सकती हैं, शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अल्ट्रासाउंड तरंगों का इस्तेमाल करके।
मतलब भविष्य में शायद हम अपने फोन की स्क्रीन पर ही किसी कपड़े की बनावट महसूस कर पाएं। ये तो, अरे वाह।
बिल्कुल, यही संभावना है। और दूसरी किस्म है काइनेस्थेटिक इंटरफेस। ये हमारे शरीर पर हल्का बल लगाकर वजन, खिंचाव, प्रतिरोध या किसी चीज के आकार का आभास कराते हैं।
अच्छा, जैसे वीडियो गेम खेलते वक्त वो जॉयस्टिक या स्टीयरिंग व्हील जो टक्कर लगने पर जोर से हिलता है या मुड़ने पर प्रतिरोध महसूस कराता है, वो इसी में आएगा।
हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। और इससे भी ज्यादा जटिल रोबोटिक आर्म्स होती हैं, जैसे कि फैंटम डिवाइस। ये आपको वर्चुअल दुनिया में किसी 3D चीज को पकड़ने और उसके आकार या वजन को महसूस करने का अनुभव दे सकती हैं, जैसे आप हवा में ही किसी मूर्ति को छू रहे हों।
लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं शायद। हमारे हाथ की संवेदनशीलता की नकल करना तो बहुत मुश्किल होगा।
यही पर असली चुनौती है। वास्तविकता को हूबहू दोहराना इंजीनियरिंग के नजरिए से बेहद जटिल और महंगा काम है। और यही पर लेनेट जोन्स के काम का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, हैप्टिक इल्यूजन, यानी स्पर्श के भ्रम।
भ्रम? जैसे नजर का धोखा होता है, वैसे ही स्पर्श का भी धोखा। ये तो बड़ी मजेदार बात है।
बिल्कुल, क्योंकि सटीक भौतिक नकल मुश्किल है, इसलिए हैप्टिक इंजीनियर्स अक्सर हमारे दिमाग को ही बरगलाने का रास्ता अपनाते हैं। वो ऐसे सिग्नल बनाते हैं जिनसे हमें स्पर्श का वैसा ही अनुभव हो, भले ही असल में वैसा कुछ ना हो रहा हो। ये एक तरह का स्मार्ट शॉर्टकट है।
अच्छा, कोई उदाहरण देंगे इसका? ये कैसे काम करता है?
जरूर। एक है फैंटम सेंसेशन। मान लीजिए आपकी त्वचा पर दो अलग अलग जगहों पर बहुत तेजी से कंपन किया जाए। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई एक चीज उन दो बिंदुओं के बीच सरक रही है, जबकि असल में वहां सिर्फ दो कंपन बिंदु हैं।
अरे वाह, मतलब डिवाइस सरल है पर एहसास जटिल बन जाता है।
हाँ, कम चीजों से ज्यादा एहसास पैदा करना। एक और उदाहरण है वेल्वेटी हैंड इल्यूजन। इसमें एक खास पैटर्न वाली सतह को अगर आप एक दिशा में छूते हैं तो वो ज्यादा चिकनी लगती है, और दूसरी दिशा में छूने पर कम, जबकि सतह भौतिक रूप से बदली नहीं है।
कमाल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कामयाब हैप्टिक डिजाइन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर चीज की एकदम सही नकल करें। ज्यादा जरूरी यह है कि आप इंसान के दिमाग को कैसे समझते हैं और उसे कैसे सही संकेत भेजते हैं ताकि उसे एक भरोसेमंद एहसास मिल सके।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये परसेप्शन ओवर सिमुलेशन वाली बात है। एहसास पैदा करना नकल करने से ज्यादा अहम है और ये बात हैप्टिक्स के डिजाइन को बहुत दिलचस्प बना देती है। लेकिन स्पर्श सिर्फ भौतिक एहसास तक ही सीमित नहीं है। जोन्स और अन्य शोध इस बात पर भी जोर देते हैं कि स्पर्श हमारी गैर मौखिक भाषा का एक बहुत शक्तिशाली रूप है।
हाँ, ये बात तो है। एक माँ का बच्चे को सहलाना, दोस्तों का हाथ मिलाना या किसी को दिलासा देने के लिए कंधे पर हाथ रखना, ये सब बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाते हैं, है ना?
बिल्कुल सही। स्पर्श कैसे भावनाओं को व्यक्त करता है, आराम, समर्थन, खुशी या कभी कभी गुस्सा या आक्रामकता भी, ये भी देखने वाली बात है कि स्पर्श का अर्थ अलग अलग संस्कृतियों में कैसे बदल जाता है। और चिकित्सा में भी इसकी भूमिका है, जैसे मालिश थेरेपी या ऑटिज्म जैसी स्थितियों या दर्द के प्रबंधन में स्पर्श आधारित हस्तक्षेप। ये पहलू हैप्टिक्स को सिर्फ एक तकनीकी चीज से आगे ले जाकर सीधे मानवीय अनुभव और जुड़ाव से जोड़ता है।
और हैरान करने वाली बात यही विरोधाभास है कि स्पर्श हमारी सबसे बुनियादी, सबसे भरोसेमंद इंद्रिय है, लेकिन तकनीक की दुनिया में इसे सबसे आखिर में जगह मिल रही है। अजीब है ना?
हाँ, ये विरोधाभास तो है। दूसरी बड़ी बात ये है कि हैप्टिक्स में वो क्षमता है कि वो हमारी डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच एक पुल बना सके। ये डिजिटल अनुभवों को सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान न रखकर उन्हें सचमुच महसूस करने लायक बना सकता है। सोचिए, वर्चुअल रियलिटी में किसी चीज को छूकर उसका वजन महसूस करना।
क्या बात है। तीसरा, ये क्षेत्र सचमुच कई विद्याओं का संगम है, इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग, डिजाइन, सबको साथ मिलकर काम करना होता है। कोई एक अकेला विशेषज्ञ इसमें सब कुछ नहीं कर सकता।
सही कहा। चौथा अहम संदेश जो हमने अभी डिस्कस किया, अनुकरण पर धारणा को तरजीह, परसेप्शन ओवर सिमुलेशन। लक्ष्य हमेशा 100% सटीक नकल करना नहीं होता, बल्कि दिमाग में एक विश्वसनीय एहसास पैदा करना होता है, और इसके लिए अक्सर चतुर शॉर्टकट्स और भ्रमों का इस्तेमाल किया जाता है।
और पांचवा, हैप्टिक्स सिर्फ गेमिंग या मनोरंजन के लिए नहीं है, ये इंसान की क्षमताओं को बढ़ाने का जरिया बन सकता है, जैसे किसी सर्जन के लिए ऑपरेशन के दौरान बेहतर महसूस करने की क्षमता, एक तरह का सुपर सेंस, या फिर तकनीक को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का माध्यम, जैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए नेविगेशन में मदद।
यहाँ मैं भारत के संदर्भ में एक बात जोड़ना चाहूंगी। हमारे समाज में स्पर्श का बहुत महत्व है, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूना, त्योहारों पर गले मिलना, लेकिन हमारी बढ़ती डिजिटल जिंदगी हमें इस शारीरिक जुड़ाव से कहीं ना कहीं दूर भी कर रही है।
हाँ, ये बात तो है।
शायद हैप्टिक्स, भले ही वो एक कृत्रिम स्पर्श हो, इस खालीपन को कुछ हद तक भरने का एक जरिया बन सकता है भविष्य में, क्या पता।
ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इस विषय से जुड़े कुछ ऐसे विचार या सिद्धांत हैं जो बार बार सामने आते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं, मतलब कुछ यादगार बातें।
हाँ बिल्कुल, सीधे उद्धरण तो नहीं है पर उनके सार को समझ सकते हैं। पहला विचार कुछ इस तरह कहा जा सकता है, हमारा स्पर्श का एहसास ही हमारी असलियत की कसौटी है। हम जो देखते या सुनते हैं उससे धोखा खा सकते हैं, पर जिसे हम छू सकते हैं उसे सच मानते हैं। हैप्टिक तकनीक इसी असलियत के एहसास को डिजिटल दुनिया में लाने की कोशिश है।
वाह, ये स्पर्श के गहरे मनोवैज्ञानिक महत्व और हैप्टिक्स के बड़े लक्ष्य को दर्शाता है।
बिल्कुल। दूसरा विचार जो हमने हैप्टिक इल्यूजन में देखा, एक असरदार हैप्टिक इंटरफेस डिजाइन करने का मतलब सिर्फ भौतिकी की नकल करना नहीं, बल्कि इंसान कैसे महसूस करता है इसे समझना और उसे सही ढंग से उत्तेजित करना है।
हाँ, मतलब इंजीनियरिंग से ज्यादा जरूरी है मनोविज्ञान और मानव धारणा की समझ।
जी। तीसरा मुख्य विचार हैप्टिक तकनीक के दो मुख्य रास्तों के बारे में है। हैप्टिक तकनीक मोटे तौर पर दो धाराओं में बटी है, एक टैक्टाइल सिस्टम जो त्वचा से बात करते हैं बनावट और कंपन के जरिए, दूसरी काइनेस्थेटिक सिस्टम जो मांसपेशियों और जोड़ों से बात करते हैं बल और गति के जरिए। सचमुच डुबा देने वाले अनुभव के लिए अक्सर इन दोनों भाषाओं की जरूरत पड़ती है।
अच्छा, टैक्टाइल और काइनेस्थेटिक। और चौथा?
चौथा विचार जो स्पर्श की मौलिकता पर जोर देता है, स्पर्श शायद वो पहली भाषा है जिसे हम सीखते हैं और आखिरी जिसे हम भूलते हैं, ये बात जन्म से लेकर जीवन के अंत तक स्पर्श के हमारे साथ रहने वाले महत्व को रेखांकित करती है।
ये सारे विचार मिलकर हमें यही दिखाते हैं कि हैप्टिक्स सिर्फ एक और नया गैजेट बनाने का विज्ञान नहीं, बल्कि इंसान होने के अनुभव को और गहरा बनाने या उसे डिजिटल दुनिया में फैलाने का एक गंभीर प्रयास है।
बिल्कुल।
तो अब सबसे अहम सवाल, ये सब ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकता है? इसके असल जिंदगी में क्या उदाहरण है?
सबसे पहला तो यही कि अब जब हमारी फोन पर कोई नोटिफिकेशन आएगा और वो वाइब्रेट करेगा तो हम शायद उसे ज्यादा ध्यान से महसूस करेंगे। क्यों कुछ कंपन हमें एक बटन दबने जैसा क्लिक महसूस कराते हैं और कुछ सिर्फ एक भिनभिनाहट?
हाँ,
ये सब डिजाइन का हिस्सा है जिसे अब हम शायद ज्यादा समझ पाएं।
हाँ, और जब हम कोई नई तकनीक खरीदने जाएं, चाहे वो VR हेडसेट हो, कोई स्मार्ट वॉच हो या यहाँ तक कि कोई नई कार, तो अब हम उसके हैप्टिक्स फीडबैक की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे सकते हैं। क्या ये सिर्फ नाम के लिए है या वाकई किसी काम का है? क्या इससे इस्तेमाल में आसानी होती है या सुरक्षा बढ़ती है?
बिल्कुल। और डिजाइनरों और इंजीनियरों के लिए तो ये एक नई सोच का दरवाजा खुलता है। उन्हें सिर्फ ये नहीं सोचना कि कोई चीज दिखेगी कैसी, बल्कि ये भी सोचना होगा कि उसे महसूस कैसा होना चाहिए। और हैप्टिक इल्यूजन का सिद्धांत उन्हें ये भी सिखाता है कि कैसे कम खर्च वाले हार्डवेयर से भी असरदार फीडबैक बनाया जा सकता है।
स्वास्थ्य सेवा में तो इसके बहुत बड़े अनुप्रयोग दिखते हैं। सर्जिकल सिमुलेटर्स, जैसे कि वो दाविंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम के ट्रेनिंग मॉड्यूल।
हाँ, वो डॉक्टरों को बिना किसी मरीज को खतरे में डाले जटिल ऑपरेशन का अभ्यास करने का मौका देते हैं। वो वर्चुअल ऑपरेशन के दौरान ऊतकों के खिंचाव या दबाव को महसूस कर सकते हैं।
सोचिए जरा।
बिल्कुल। इसी तरह पुनर्वास में रोबोटिक्स की मदद से स्ट्रोक जैसी बीमारियों के मरीजों को अपनी मांसपेशियों पर दोबारा नियंत्रण पाने में मदद मिलती है, जहाँ हैप्टिक फीडबैक उन्हें सही मूवमेंट सिखा सकता है। और जो लोग कृत्रिम हाथ या पैर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए संवेदी फीडबैक जुड़ जाने से वो अंग ज्यादा अपना और स्वाभाविक महसूस हो सकता है।
और एक्सेसिबिलिटी यानी सुगमता के क्षेत्र में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है।
रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले पहले से ही डिजिटल टेक्स्ट को दृष्टिबाधित लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
हाँ।
और नेविगेशन के लिए कंपन आधारित उपकरण रास्ता बताने में मदद कर सकते हैं।
गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है ना?
जी हाँ, टचस्क्रीन पर कोई बटन दबाने पर अगर हल्का कंपन महसूस हो तो ड्राइवर को पुष्टि मिल जाती है और उसे सड़क से नज़र हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर अगर गाड़ी अपनी लेन से बाहर जा रही हो तो स्टेयरिंग व्हील में कंपन से चेतावनी देना सिर्फ बीप की आवाज़ से ज्यादा असरदार और सहज हो सकता है।
सही बात है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो ये सारी जानकारी हमें अपने आसपास की असली दुनिया के स्पर्श के प्रति भी ज्यादा जागरूक बना सकती है।
हाँ, जैसे अगली बार जब आप चाय का कप पकड़ें तो उसके वजन और गर्माहट को महसूस करें, या अपनी मेज की सतह की बनावट पर ध्यान दें। ये डिजिटल दुनिया की भागदौड़ में एक छोटा से सचेत ब्रेक हो सकता है।
तो इस सारी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ा सबक या सबसे दिलचस्प बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे अहम बात ये रही कि स्पर्श सिर्फ हमारी 5 इंद्रियों में से एक नहीं, बल्कि कुदरती इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है जो हमारी असलियत की पूरी समझ के केंद्र में है। और हैप्टिक तकनीक की क्षमता सिर्फ गेमिंग से कहीं ज्यादा है। ये मेडिसिन, एक्सेसिबिलिटी, यहाँ तक कि हमारे आपसी संवाद के तरीकों में भी क्रांति ला सकती है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि तकनीक के साथ हमारे रिश्ते का अगला पड़ाव सिर्फ देखने और सुनने से आगे बढ़कर महसूस करने पर आधारित होगा। हैप्टिक्स अब कोई दूर के भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ठोस, मानवीय और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो हमारे डिजिटल जीवन को बदलने की कगार पर है।
बिल्कुल।
तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा से ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, हम अपने जीवन में सार्थक स्पर्श, चाहे वो असली दुनिया का हो या हैप्टिक तकनीक से मिला हो, उसे सचेत रूप से कैसे शामिल कर सकते हैं ताकि हमारा मानवीय जुड़ाव और भावनात्मक स्वास्थ्य बना रहे?
हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा सोचने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।